हर रोज 15 मिनट जप जरूरी है, ये जरूरी। जब आप जप करते हैं तो बस जप ही कीजिए। ओम भूगोल बस निरंतर बिना ब्रेक, जैसे योग वासिष्ठ में वशिष्ठ ने कहा कि जप करने के दो सूत्र हैं। सुनाई पड़ रहा? नहीं तो नजदीक आ जाओ ना, हम हमारा वॉइस जरा कमजोर है, नजदीक आ जाओ भाई, अपना घर है, अब दूर बैठने क्या जरूरत है, वो तो लेक्चर है, ये तो लेक्चर है, या तो हम अपने। तो तेल धारा मेवा छिन्नम, जैसा तेल एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में देखते हैं तो कहीं ब्रेक नहीं होता है, कंटिन्यूटी होती। दीर्घ घंटा निनादवत, अब जैसे एक घंटे पे एक चोट से दूसरा चोट देते हैं तो टन 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 प्रचोदयात प्रचोदयात, दूसरा मंत्र शुरू, प्रचोदयात ओम भूभुवः स्वः नमः भूदेवाय, प्रचोदयात ओम भूभुवः स्वः, इस साइकिल ये 15 मिनट, उससे ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो काम हो गया आत्मा के लिए, आत्मा के लिए जिसको। अरे बैठे ना आराम से, यहाँ आ जाइए आप,
यहाँ आ जाइए, आप थकूंगे बहुत, आ जाइए।
आप बहुत थक गए होंगे जब भाई इस तरह फील कर रहे हैं, आपको ऑर्गेनाइजेशन में तो ज्यादा थकावट होती है, लेकिन मौके कम मिलते हैं इसलिए मैं भी बैठ गया हूँ कि ठीक है, जरा और थकेंगे और क्या है। तो ये दोनों चीज समझ में आ गया। असल में गुरुजी कहा करते थे कि जीभ हिलना चाहिए, ओंठ हिलना चाहिए, लेकिन शब्द बाहर नहीं आना है। इसको जो है उपांशु जप कहते हैं या मानसिक जप, अगर ये भी रुक गया तो मानसिक जप हुआ। लेकिन गुरुजी हमेशा एडवाइस देते थे कि उपांशु जप करो, मतलब जीभ हिलना है, ये लिप्स हिलना है, लेकिन शब्द बाहर नहीं आना है। उम्र एक मंत्र के बाद एक मंत्र, एक मंत्र के बाद एक मंत्र, तो एक तरह से बिल्ड अप सेट्स वाइब्रेशंस, स्पीड जितना चाहे उतना। गुरु जी हमेशा कहा करते थे कि तेजी बढ़ता है तो आप सही ढंग पे हैं, स्लो मत हो जाना। मैं तो बाहर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको समझ में आया कि मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन लिप्स हिलता रहे, जीभ हिलता रहे। ये इसलिए जरूरी है कि सारी दुनिया, भगवान श्री कृष्ण ने कहा आपके मुंह में है, उन्होंने केवल यशोदा को ही नहीं दिखाया, ये हमारे पिंडांड ब्रह्मांड के समन्वय में, ये हमें याद रखना है कि सारी दुनिया हमारे मुंह में। अब जैसे नाव है, हम खे रहे हैं तो वो क्या कहते हैं मोड़ते
है?
नहीं नहीं, वो डायरेक्शन चुपकानी तेलुगु में कहते हैं, जब नाव चलता रहता है ना तो उसको दिशा देने के लिए एक जरा सा मोड़ते हैं, समझ में आया मैं क्या वट एवर यू अंडरस्टूड ना,
वो
डायरेक्शन चेंज करने के लिए जो आता है ना।
तो जब हम गायत्री मंत्र जपते हैं तो 24 धाराओं की ओर वो शक्ति बहती है, जो अक्षर न्यास में हमने, तो ये तुमको जानने की जरूरत नहीं है कि वो किधर जा रहा है, वो तो अपनी दिशा में अपना जाएगा, जब ता कहोगे तो कही जाएगी, जैसे तत् ओम भूर्भुवस्व तत् सा वी तुहु वा रे नी यम भर गो दे व स्या धी लिवर धी स्प्लीन मही धी नाभि फिर धी यो यो नह प्र चो द यात, दैट हाउ द एनर्जी मूव्स। अच्छा न्यास, तो इसको याद करने में भी बहुत बड़ा मुश्किल नहीं है, 2-3 बार आपने अगर अपने मन में सोच लिया तो मतलब आप फील कर सकते हैं कि शरीर में वो वाइब्रेशन आ रहा है। कोई जरूरी नहीं कि आपको एग्जैक्ट पता चले वो कहाँ है, आप कुछ भी सोचेंगे वो जाएगा वहीं जहां उसको जाना है, हम दा के हैं और सोचें यहाँ जा रहा तो वो थोड़ा ना जाएगा, वो तो वही जाएगा जहाँ दा शब्द को वाइब्रेशन जा रहा है. सो डोंट वरी अबाउट द पोजिशन. ठीक है, तो 15 मिनट कभी भी. लेकिन गुरुजी एक बात निश्चित रूप से कहा करते थे कि समय जो है और प्लेस एक ही जगह हो तो बहुत अच्छा है. हर रोज उसी समय पे उसी जगह ज्यादा उसका वाइब्रेशन बढ़ता है. तो इससे क्या होता है कि तुम्हारे जो 2400 इंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 प्राण, 5 तत्व, मनोबुद्धि चित्त अहंकार, 24, ये सब जो हैं प्रकृति के चैनल बन जाते हैं ऑटोमेटिकली. दैट इज व्हाई श्री राम शर्मा आचार्य वांटेड दिस मंत्र टू बी प्रैक्टिस्ड बाय विनोद, बट ही हैज मोल्डेड इट इन सच ए वे बाय हिज ओन साधना दैट जस्ट अटरिंग इट इज इनफ, यू आर ऑटोमेटिकली कॉन्टेक्टेड विद हिम. व्हाई वी आर नॉट फीलिंग हिज प्रेजेंस इज बिकॉज वी आर नॉट रेगुलर.
That's what I mean. हमारा यही होता है. मंडे टू फ्राइडे तो वी कैन बी ऑन दैट सेम, बट सैटरडे संडे आता है तो पूरा
डजंट मैटर. अरे जब स्कूल कॉलेजेस में जब 2 दिन की छुट्टी मिलती है तो इसके लिए क्यों नहीं छुट्टी मिलेगी.
नहीं वही बोलते हैं कि मैं बहुत कोशिश करती हूँ सुबह 4 बजे उठूं.
नहीं नहीं आप एक सुबह 4 बजे के बारे में मत सोचो, तुमको जब मौका मिलता हो उसको पकड़ो. जो निश्चित रूप से आपको लगता है कि ये काम कर लेते, मैं अक्सर करता हूं सोने के पहले उस उठने के बाद. बस समय को हम नहीं कर पाता हूं क्योंकि लेक्चर्स वगैरह होते हैं, तो सोने के पहले 15 मिनट, उठते ही 15 मिनट बिना मुंह धोए मंत्र कर लेता हूं आधा घंटा. लेकिन गुरुजी ने आधा घंटा नहीं 15 मिनट ही बोला, उतना काफी. मैं जो करता हूं बताया हूं, तो इसके लिए समय रखने की क्या जरूरत है.
नहीं पहले हमारी जॉब 8:30 बजे से, अभी 7 बजे शुरू हो जाती है ना, तो सुबह में इतनी भागा दौड़ी होती
नहीं. तो तुम इतना क्यों, तुम उठते ही कर लो 15 मिनट, या तो अगर समय नहीं मिलता तो 15 मिनट पहले उठो ना. वो पूजा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ,
अभी जब भी और ध्यान की
पूजा अलग से करना है. मैंने अभी मैं बता रहा हूँ इनके समस्याओं का, जो सबका समस्या है कि हमारी जिंदगी को किस तरह जो है गायत्री मंत्र के अनुकूल ढालना है. पूजा तो कर्मकांड है, कर्मकांड तो गुरुजी कभी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, ये बात हमेशा वो कहते हैं, क्योंकि कर्मकांड की वजह से जो चीज हम कर सकते हैं वो नहीं कर पाते हैं. इसीलिए वो
कहते हैं
मंत्र जाप करते हैं और गुरुदेव के वो 24 मंत्र के साथ करते हैं.
बस 3 शरीर का ध्यान है
और 3 शरीर का ध्यान.
तो ये ना ना पहले हमें बात बताने दीजिए कि 15 मिनट आपको ये करना है. इसके बाद जब लोगों से, जो रिश्तेदारों से या जिसी से संबंध हो, तो गुरुजी 2 बात हमेशा याद रखने बोलते हैं. पहले वो जो बोलते हैं वो सुनो और मन लगा के सुनो. ज्यादातर जो है कई रिश्तेदार रिश्तों में सुनना बंद हो जाता है, बोलना ज्यादा हो जाता है. तो यह जरा अवेयरनेस रखो बस, इसको कुछ करना नहीं है. अगर वो कुछ बोलता है तो सुनते, नहीं बोलेगा तो सुनने की कोई बात ही नहीं. ये बात है. दूसरा बात, जो बोलना चाहो वो प्यार से बोलो. बोलना है एक ही चीज को, एक गिलास पानी लाओ, बहुत प्यास लगी है एक गिलास पानी दे दो, एक ही चीज हुआ ना. लेकिन बोलने का ढंग का अंतर आपको सीखना है, ये एक चीज है. ये पहले लगता है जैसे बनावटी है, पहले हमको भी लगता है तो आदत नहीं, लेकिन 3-4 दिन में आदी हो जाएगा. लेकिन इन रिलेशन में हमने बातचीत की बात कहा, लेकिन एक और चीज गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि कहीं कुछ देना पड़ता है कहीं कुछ लेना पड़ता है. हर रिश्तेदारों में तो इसे होता है कि इसको ये देना उसको देना उसको ये देना. देने का मतलब पैसे के ही बात नहीं, मैं कह रहा हूं प्यार को. प्यार देने का ढंग होता है अलग अलग ढंग से. तो कहते हैं तुम अपना जो रिलेशनशिप है सही रूप से निभा रहे हो कि नहीं ये देखो. बिजनेस मत करो, वो ऐसा है तो मैं क्यों ऐसा होऊंगा, ये कहा करते थे. तो ये तो हर रिश्तेदारों में, हर परिचितों में राह चलते हुए कोई मिल गया उससे भी वही संबंध. कुछ पाना हो तो पाओ, कुछ देना हो तो दो. 2 सूत्र समझ में आ गया, एक तो मंत्र जप, दूसरा पूरी बात सुनो प्रेम से बोलो, उसके बाद जिससे देना है वो दो, भले ही वो जो उसको देना है वो ना देता हो, फर्क नहीं पड़ता. जो सही करेगा उसको ज्यादा नंबर मिलेंगे, जो रॉन्ग नंबर करेगा उसको नंबर नहीं मिलेगा। तुम ज्यादा नंबर पाओ ना, उसके नंबर के लिए क्यों परेशान होते हो। तो ये जो है रिलेशनशिप के बारे में गुरुजी कहा करते थे। और उसके बाद गुरुजी एक चीज कहते थे, समर्पण सीखो, गुरु को समर्पित होना सीखो। और परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं समर्पण इतना आसान नहीं जितना हम मुंह से बोल देते हैं। वो खुद कहते हैं कबीर दास के रूप में हम समर्पित नहीं हो पाए अपने गुरु को। समर्थ गुरु रामदास, अपने आत्मकथा पढ़ा ना, बड़े साफ लिखते हो, समर्थ गुरु रामदास के रूप में हम अपने गुरु को समर्पित नहीं हो पाए। श्री रामकृष्ण परमहंस के रूप में मैं समर्पित नहीं हो पाए, इस जन्म में मैं समर्पित हो सका। तो समर्पण उतना मुश्किल नहीं है, गड़बड़ जब हो जाता है जब आपकी पोस्ट ऊंचा होता है। कबीर दास थे इसलिए समर्पण मुश्किल हो गया। क्यों मुश्किल हो गया? वो कहते हैं क्योंकि मैं तो ज्ञान योग के पीछे पड़ा था। कबीर दास तो ज्ञान योगी था। तो जब आप एक अहंकार में, उनकी दृष्टि ज्ञान के ऊपर है, तो ये कमी थी कबीर दास की भक्ति और कर्म भूल गए। वो गलती हमसे तो होगी नहीं, तो हम तो इस धरातल पे जिसमें हमको समर्पण करना आसान है, ये समझिए। गुरुजी को तकलीफ इसलिए कि उनकी जिम्मेदारी ज्यादा था, ज्यादा सीखना था उनको। तो उसके बाद समर्थ गुरु रामदास कर्मयोग, तो कर्मयोग के बारे में था, कोई भक्ति कुछ नहीं। अगर हनुमान जी के टेम्पल भी बनाए उन्होंने 700, तो उसमें अखाड़ा बना दिया। कर्म गलती वहां होता है। गुरुओं के बारे में समर्पण की बात होती है तो तुम बना रहे हो हनुमान जी का मंदिर और हनुमान जी के बारे में कुछ नहीं हो रहा है। अखाड़ा बनाओ, तुमको लड़ना सीखना है ताकि हमारे जो आक्रामक है उनसे लड़ना है। तो वो कमी थी वहां पे। उसके बाद रामकृष्ण परमहंस में आए थे तो भक्ति योग में डूब गए। अब मामूली तरह से नहीं डूबे, हमें तो ऐसा कोई साधक, कोई सा महात्मा नहीं मिलता जिसने हर देवता को प्रत्यक्ष किया हो, हर धर्म को प्रत्यक्ष किया हो। फिर कोई हिंदू महात्मा हो तो कोई हनुमान के भक्त हैं, कोई राम के भक्त हैं, कोई कृष्ण के भक्त हैं जैसे मीरा वगैरह, लेकिन ऐसा कोई महात्मा आपको पता है जिसने हर देवता को साक्षात्कार किया हो? तो वहां वो ज्यादा उसमें लग गए। और केवल उसमें नहीं लगे क्रिश्चियंस, अब कहा करते थे कि जब वो हनुमान जी का साधना कर रहे थे तो पेड़ पे बैठते थे उछल के, और उनका पूंछ भी 6 इंच निकला, तो इतना तीव्र उनकी साधना होती थी। तो जो भी साधना करते थे वो इस तरह करते थे, अब जैसे मोहम्मद का साधना कर रहे थे इस्लाम का, तो देवालय की ओर मुंह नहीं कर पाते थे। कहते थे कि हमको तो मुंह देखना नहीं, हमको उसको देखता ही नहीं था, मैं पैर उधर रखता था। सीरियसनेस, इतना सब करने के बाद ज्ञान कर भक्ति के बाद जब आए, जब गायत्री मंत्र को पकड़े हो तब उनको समर्पण आया। ये उनकी कमजोरी की मैं बात कर रहा हूं, इतने ऊंचे धरातल पे वो कर सके। तो गायत्री मंत्र से तो हम बड़े आसानी से कर सकते हैं समर्पण। आप समझ में आया क्यों आसान है? जब उनको जो इतना जटिल मार्ग से समर्पण सीखने के लिए गायत्री मंत्र सहायता किया, तो अगर आप 15 मिनट गायत्री मंत्र करेंगे तो आप ऑटोमेटिक आप समर्पित हो जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं हम लोगों को बहुत बड़ा वरदान उन्होंने गायत्री मंत्र के रूप में दिया। तो ये समर्पण में क्या करना है? तो समर्पण में वह करना है जो गुरुजी चाहते हैं, लेकिन गुरुजी जो चाहते हैं वह बड़े साफ शब्दों में कहा कि हम ये नहीं चाहते कि आप अपना काम छोड़ के इस मार्ग पे आए। अंशदान या समय दान या प्रतिभा दान, सब दान, दान मतलब वह जो हमको जरूरत नहीं वो देते हैं, जाहिर है जिनका हम उपयोग नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि दान गलत है, दान शब्द का उपयोग तब होता है जब हम दे सकने की स्थिति में होके देते हैं। हम दे सके और सब कुछ लुटा दिया वो दान नहीं कहलाता, वो त्याग कहलाता है। और गुरु जी त्याग के बारे में नहीं बताते आजकल। तो क्या कहते हैं कि हमारा काम, 5 मुख्य काम इन 3 सालों में हमको करना है। पहला यज्ञ का प्रचार। तो यज्ञ का प्रचार आप खुद जाके कर सकते हैं या आप करने वालों को मोटिवेट कर सकते हैं। ये नहीं कि आप खुद जाके करें तभी हुआ, मोटिवेशन भी तो इंपॉर्टेंट है ना। लेकिन इस यज्ञ में आपको एक बात याद रखनी है कि गायत्री मंत्र की आहुतियां पढ़नी है, चाहे वो दीप यज्ञ हो चाहे जो कुछ हो, और उसके बाद वो त्र्यंबकम यजामहे मृत्युंजय मंत्र, और अगर आप कोई और मंत्र चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं। क्यों यज्ञ का इतना महत्व है? गुरुजी कहते हैं कि मंत्रों के तरंग अग्नि से वेग पकड़ते हैं। अग्नि हर चीज को वेग देता है। खाना बनाना है तो आग चाहिए, कुछ भी करना हो, अगर आयरन मेटल वो खनिज से लगाना है तो वहां भी आग चाहिए, कुछ बड़ा आग चाहिए। तो इस आग का उपयोग करने के लिए एक चीज उन्होंने कहा कि आग का मतलब समझे, अग्नि का मतलब समझे। अग्रे नयति इति अग्नि ही, जो आपको आगे ले जाता है वो अग्नि। अब जैसे एक काम करने से 100 रुपया मिलता है, वो काम करने से 200 रुपया मिलेगा, तो हमको आज तक ऐसा कोई आदमी नहीं मिला कि 200 को छोड़ के 100 की ओर गया हो। तो उसको आगे कौन ले जा रहा है? धन ले जा रहा है ना। लेकिन ये आगे ले जाने की ताकत अग्नि के वजह से आता है। अग्नि मतलब अंदर का अग्नि, जोश की अग्नि, उत्साह की अग्नि है ना। तो वो अग्नि डेवलप करने के लिए ये आग उपयोग करते हैं। तो वहां जब बैठे हैं तो गुरुजी हमेशा कहते हैं उपासना का मतलब है जहां पे आप बैठे हैं उसके लक्षण आपके अंदर आना चाहिए। आग के पास बैठे हैं तो गर्मी आती है, बर्फ के पास बैठे हैं तो ठंडक आता है। तो 5 उपासना रहस्य वो बताते हैं कि जब आप यज्ञ करते हैं तो हमें कौन आगे ले जाएगा? गुरुजी आगे ले जाएंगे, ये सोचते हुए करो तो वो आगे ले जाएंगे। दूसरा क्या है आग की खूबी? जो भी उसके साथ होता है अपने जैसे डाल लेता है। तो जो भी हमारे पास आए मैं कोशिश करें कि जैसे गुरुजी चाहते वैसे बनाए। तीसरा क्या है आग की खूबी? अगर वो कोई भी चीज हो बाद में उसकी खूबी वो भूल जाए, लेकिन जब तक उसके साथ हो, जैसे लोहे का गोला, लकड़ी मिल गया तो उसको तो आग ही बना देगा वो, लेकिन अगर एक लोहे का गोला भी आ जाए तो लोहा तो लोहा है लेकिन आग के पास में वो भी आग हो जाता है, लाल हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो यह स्वभाव हो सकता है कई आदमी ऐसे हैं जो हमारे कहने से नहीं बदल जाते हैं और पूर्ण रूप से, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बदल जाए। बात समझ में आया ना? ये गलती अक्सर होता है, अक्सर होता है। आग के पास जाए तो गर्मी तो पाना ही है उसको। गर्मी का मेरा मतलब ये नहीं कि आप उसको गर्म कर दे कुछ कर दे, भावों का कि हमारे गुरुजी इस तरह के, तो कहने का ढंग जो है उनके उद्देश्य के ऊपर होता है वो क्या चाहते हैं। लेकिन गुरुजी क्या चाहते हैं अगर हमें मालूम हो तो हर परिस्थिति में वो भाव उनको दे सकते हैं, हर परिस्थिति में। ये भाव से 3 समझ में आ गया ना? एक तो हमें आगे ले जाएगा, दूसरा जो भी आ जाएगा अपने जैसे बना देगा, नहीं बना भी पाए तो जब तक वो है वो अपने जैसे ही रखेगा। चौथी चीज आग की सबसे बड़ी खूबी यह है कि नश्वरता बताता है कि आप जितने भी बड़े हों अंत में तो बनना भस्म ही है। लेकिन यह भस्म बेकार का मत समझो, यह भस्म हमारे अंदर 4 शक्तियां देती हैं, जमद अग्नि रीति ललाटे, सोच का ढंग बढ़ाता है, उसके बाद ग्रीवा बोलने का ढंग, दाया हाथ काम करने का ढंग, और इन सब के साथ भावना। तो भस्म ये यही तो याद रखते ना कि गुरुजी के बारे में या किसी भी महान आदमी के बारे में यही तो सोचते हैं कि वो कैसे सोचता था, कैसे बोलता था, क्या करता था, क्या भावना थी। ये भस्म का मतलब वो तो भस्म ही है ना अभी फिजिकली, लेकिन तो सर्वांतरयामी हो गए। तो जब सर्वांतर आदमी आदमी इस तरह सोचता है, इस तरह बोलता है, इस तरह करता है, इस तरह का भाव है, तो अपने आप तुम बदल जाओगे क्योंकि तो सर्वांतरयामी आप इसको याद कर। लेकिन हम ये जब लगाते हैं तो ज्यादातर एक में हम देखते हैं कि समेटने की चर्चा में मन लग जाता है, ये भाव भूल जाते हैं। लेकिन जो ये भाव रखे हैं तो उसका रिजल्ट निश्चित आएगा। यज्ञ के बारे में मैं बता रहा हूँ। उसके बाद यज्ञ के साथ एक चीज निश्चित रूप से हम लोगों को करना है कि जन्मदिन को नोट करनी है। और उनका जो जन्मदिन जब आए तो आप यह ओके जब उठी गई हो तो पानी नहीं, कुछ गर्म लाओ, चाय बनाओ हमारे लिए, नहीं जो भी पीना चाहे तुम पियोगे, तुम चाय नहीं पीते, गर्म दूध पियोगे, कोई हमारा साथ नहीं देगा डॉक्टर। हाँ ये कोट मिला तो मैंने वो बना लेगी,
वो बना लेगी
जो है वो देख लो, तुम आ जाओ उसको बनाने दो। यही मैं कह रहा था रिलेशनशिप में, जो कर सकता करने दें, अगर ये अगर हम अपना तो नहीं बढ़ा पाए तो फिर हम क्या समझे रिलेशनशिप में, वो भी तब जबकि इस वातावरण में, क्योंकि इस वातावरण में तो फ्री है। वो पानी की बात जब कहा तब तक हमको चाय याद नहीं आया, जब ये उठी तो हमने कहा चाय याद आ गया तो हमने चाय मांग दिया। अगर यह नहीं मांग पाया तो फिर क्या अपनत्व है, लेकिन अपना तो बाहर थोड़ा ना दिखा सकते, तो बाहर तो बाहर है। ये याद रखना है, ये देखना है, ये अंतर नहीं रहेगा तो फिर सब गड़बड़ हो जाता है। बेचारे परेशान हो गए। बात पूरा कर लेना। तो ये चौथा बात आग के बारे में बताया। चौथा बात क्या है, विभूति। आग की सबसे बड़ी खूबी ये है कि आग एक ऐसी चीज है जो आकाश तत्व को और वायु तत्व को और अंदर जो है पृथ्वी तत्व को और जल तत्व को जोड़ता है। जोड़ने का मतलब आग की एक सामर्थ्य है कि कठोर सॉलिड आइस को लिक्विड बना सकता है, लिक्विड आइस को वायु बना सकता है आग। और क्या कर सकता है आग, अगर स्टीम को आपने और गर्म किया तो अणु दूर हो जाते चले जाते हैं और बीच में आकाश बच जाता है ना। तो आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, इन सब का संबंध केवल आकाश की कमी या ज्यादती में है। तो आग जो है इन चार तत्वों का आधार है। तो यही चार तत्व मन में, बुद्धि में, चित्त में और अहंकार में काम करता है। कुंडलनी किताब एक है ना गुरु जी का, कुंडलनी सावित्री और क्या है
सावित्री।
गायत्री
सावित्री,
उस वाग्मय में उन्होंने दिया कि मन क्या है, कौन तत्व है, बुद्धि क्या है, वायु अहंकार क्या है और चित्त क्या तत्व है। तो आग जब इन तत्वों को भौतिक रूप में ही परिणित कर सकती है तो तुम्हारे मन को और बुद्धि को और चित्त को और कितना बदलेगी, तो ये सीक्रेट है, वो अपने आप हो जाता है, हमको कुछ नहीं करना है। तो क्या होगा उसमें, जो जो आग की प्रतिभा बढ़ती है तो आकाश तत्व बनेगा ना। आकाश का गुण क्या है, वाक, शब्द। तो जिसके वाणी में आग हो वो जो बोलेगा वो हो जाता है, तो ये साइंस है उसका। तो गुरुजी ये सब नहीं बताया कि ये क्या करते रहो अपने आप होगा, वो ये सब समझाने की क्या जरूरत। टीवी ऑन करके सिनेमा कुछ देखना हो तो कोई जानना जरूरी है कि कैसा ऑपरेट होता है और कहां से करंट आता है, कहां से आप यज्ञ कर। इसलिए यज्ञ ज्यादा जरूरी है, हर सप्ताह में एक बार, यह साइंस है क्यों करना है। तो समझ में आएंगे इंपॉर्टेंस है। पांचों जो है अग्नि के लक्षण, तो आपकी दृष्टि जिस ओर रहे वो ज्यादा जल्दी। आग अगर ढंग से आपने कंट्रोल करके किया तो उसका आग ज्यादा बढ़ेगा। उसी तरह जो है कहते हैं कि जब आप क्या कहते हैं संविधाओं को, क्या करते हैं उसको, सजाते हैं ना आग जलाने के पहले, तो उसको सजाने के लिए कहते हैं चौकोर सजाओ। चौकोर क्यों, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो हर चीज जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। यज्ञ कुंड के शेप अलग अलग शेप में अलग अलग तरह के लेकिन गुरुजी कहते हैं चौकोरी रखो, चूंकि हमको चारों बदलना है, चित्त बुद्धि अहंकार मन सबको बदलना है, इसलिए नहीं नहीं सब। लेकिन ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया उन्होंने, कहा ये करो। लेकिन क्या तुम समझते हो ये बिना एक्सप्लेनेशन जाने तुम करोगे तो ये फल नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा, लेकिन तुम्हें नहीं पता चलेगा कहां से आया। तो जो रेगुलरली यज्ञ करते हैं धीरे धीरे उनको समझ में आता है कि मैं जो बोलता हूँ घटित हो जाता है, मैं जो चाहता हूँ वो आने लगता है। तो ये रेगुलरिटी पे है। रेगुलरिटी का ये मतलब नहीं कि आपको रोज करना है, सप्ताह में एक बार काफी। तो ही नोज कितना देना है, तो ज्यादा करने की जरूरत नहीं, सप्ताह में एक बार। अगर संभव हो तो अलग अलग सप्ताह में अलग अलग जगह आप कर सकते हैं। तो ये प्लानिंग कहीं भी करें रिजल्ट वही आएगी। तो ये तो यज्ञ का प्रभाव में बता रहा हूं, अग्नि का प्रभाव हमने बताया अभी। लेकिन वहां तो 24 अंश अपवित्र पवित्र हुआ पवित्रीकरण से। फिर हम अग्नि से कहते हैं कि अब तो आप जा रहे हैं, लेकिन याद रखना जब जब मैं बुलाऊ आओ, पुनरागमन आया चार, आपको फिर आना है जब मैं बुलाऊंगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम आग को बुला रहे हैं, फीलिंग हम भूल जाते हैं, वो फीलिंग को जोड़ दो, इसको भावना कहते हैं। जब हम अग्नि को हम ये मंत्र पढ़ते हैं तो ज्यादातर लोग हमने देखा है कि वो आग के बारे में भी नहीं सोचते, वो कुछ और करते रहे। जब तक अंतिम मंत्र ना पूरा हो जाए, कोई ना उठे, फीलिंग ये भावना जितना बढ़ेगा उतना अच्छा होगा। ये तो अग्नि का प्रभाव हुआ। जानबूझ के ज्यादा दे रही थी आए क्योंकि भाई कोई धोखा खाने वाला थोड़ा ना, मैंने ध्यान जाग के देखा कितना है। डॉक्टर कुछ पियोगी चाय थोड़ा सा? उसको उसको जाने दीजिए। नहीं तो अक्सर हमने देखा है बच्चे जो है सुनते सुनते सो जाते हैं, तो अगर इस तरह का काम करें तो जागे रहेंगे। भाई प्रॉब्लम है भैया।
इसके बाद आप दो महीना छुट्टी लेना पड़ेगा।
बहुत बहुत सुनने सुनने के लिए भी ताकत चाहिए।
आप शेयर करेंगे थोड़ा
श्रीकर? नो इट्स ओके। No, no, if you want to sleep, you just relax. अच्छा अच्छा हाँ। तो जन्मदिन और विवाह दिन गुरुजी बहुत ज्यादा स्ट्रेस करते हैं। इसलिए स्ट्रेस करते हैं कि जन्मदिन के समय हम ये भूल जाते हैं कि पांच तत्वों से बना शरीर है। तो हर साल हमको ये देखना है कि इन पांच तत्वों की किस तरह हमारे मन में आता है, किस तरह हम ग्रो कर रहे हैं। वृद्धि तत्व क्षमा और सहनशीलता बढ़ाता है। तो हर साल हमको देखते रहना है कि क्षमा और सहनशीलता बढ़ रहा है। अब जैसे फर्गिव एंड फर्गेट कहते हैं, तो गुरुजी बड़ा विचित्र उसका जो है एक्सप्लेनेशन दिया। टू गेट फार यू हैव टू गिव फार, गिव समथिंग। तो कुछ पाना हो तो कुछ देना होगा। टू गेट फार फर्गेट, फॉरगेटिंग उनका चमत्कार जो तुम कहाँ ढूंढ रहे हो, हर जगह घूमा कहीं नहीं मिला, वो भगवान तो नव ही है। तो शब्दों का वो प्रभाव आग से आता है, यज्ञ से आता है। तो इसका हमने फल यूनिवर्सिटी एग्जाम में आप बढ़िया मार्क्स पाएंगे जिंदगी। वो हर जगह जब बढ़ोतरी होती तो हर एंगल में होता है, ऐसा थोड़ा ना होता है कि एक कोने में होता है। तो फॉरगिव एंड फॉरगेट का वृद्धि तत्व का मतलब है टू गेट समथिंग, गिव समथिंग. गुरु जी उसको दूसरे तरह से बताया इंग्लिश के, इंग्लिश में तो ये चमत्कार ही है हम समझते, क्योंकि दोनों शब्दों का अर्ध ही विकृत हो गया है. फॉरगेट मतलब भूल जाओ, भूलने की बात नहीं पाने की बात है वहां. फॉरगेटिंग नॉट फॉरगेटिंग पर कामा गेटिंग. सो यू हैव टू गिव समथिंग, गिव समथिंग. उसको गुरु जी कहा करते थे कि क्या कहते हैं, बो और काटो. तो जन्मदिन के मूलाधार में ये सीखना है कि हम क्या बोएं ताकि हम आगे क्या पा सकें. स्वाधिष्ठान में जल तत्व के लक्षण है शीतलता और पवित्रता. मणिपूरक चक्र में यानी आग के चक्र में उत्साह और सक्रियता. हृदय के चक्र में चारों ओर जो है गंध फैलाना. और विशुद्धि वाक शक्ति, तो वाक शक्ति गुरु जी के कुछ भी चीज बताओ हमेशा उन्हीं की बात आती रहती है. तो हर जन्मदिन पे यह आपको देखना है कि हम कितने आगे बढ़े इस दिशा में. तो ये जन्मदिन हुआ. विवाह दिन में उसका चमत्कार ही हम भूल गए. भारत देश में जहां विवाह संस्कार होता है तो एक जोड़ा नहीं बनता, कितने संबंध बढ़ते हैं, कितने संबंध बढ़ते हैं. और वो एक उस एक दिन के लिए नहीं बनता, लाइफ लॉन्ग बनता है. तो वह हम भूल गए, ये रिलेशनशिप्स बिल्कुल भूल गए. तो इन रिलेशनशिप को कैसे, ये आपको कर्मकांड भास्कर में इन्होंने काफी बढ़िया लिखा है, उसी के कुछ शब्द मैं आपको बता रहा हूं बस. तो यज्ञ और जन्मदिन विवाह दिन, यह एक काम है जो गुरु जी बताते. दूसरा क्या है, क्रांति धर्मी साहित्य पढ़े. और हम जो भी आज तक मैंने बोला है और बोलने वाला हूं उन्हीं 20 किताबों से बोल रहा हूं. कोई नई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको. और ये मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर आपको लगा कि ये किताब पढ़ने के बाद हमको वो चीज नहीं आया तो हमसे हमारा कॉलर पकड़ना कि तुमने कहा ऐसा, हमारा कॉलर तैयार है. लेकिन वैसा ओकेजन नहीं आएगा. हमने गुरु जी का पूरा साहित्य पढ़ा, ज्यादातर हम ये बात तो नहीं कर सकते गुरु जी का पूरा शायद कोई भी नहीं पढ़ सकता है, लेकिन काफी पढ़ा है और गुरु जी से भी काफी अनुप्राणित हूं क्योंकि उनके पास था, उनसे कई बातें ऐसी थी. इस आधार पे मैं कह रहा हूं कि 20 किताबें काफी हैं. यह फिर आप सोचने की कोई जरूरत नहीं कि क्या बताना है, बताना तो उसमें है, उसको आप अपने ढंग से मॉडल कीजिए, वो तो अपना आप बदलेगी. तो ये दूसरा है, क्रांति धर्म साहित्य पढ़ना और पढ़ाना. तीसरा क्या है, हम ये सब नहीं कर पाएंगे तो गायत्री मंत्र का जप करो. साल में 2 साल नवरात्रि अनुष्ठान जरूर करो और हर रोज जितना हो सके 15 मिनट काफी करते रहो. ये भी ठीक है, गुरु जी का काम हो जाएगा. हमने कहा ना गुरु जी ने ये जो टेक्नोलॉजिकल फास्टनेस आई है गुरु जी के गायत्री साधना से आई है. बहुत कम लोग जानते हैं इस बात को, बहुत कम लोग जानते हैं. और वो कभी नाम कमाना नहीं चाहते थे, लेकिन हम समझते हैं हमारे गुरु के बारे में मैं बता सकता हूं चाहे गुरु जी अपने बारे में ना बताए हो, इसलिए मैं ओपनली बताता हूं. और प्रमाण उनकी जीवनी देख लो, उन्होंने गायत्री साधना करने के बाद ही तो हर तरह से चमत्कार होने टेक्नोलॉजी में शुरू हुआ. और वो क्या कहते हैं, अब टेक्नोलॉजी मन में आना है. अभी हमने तत्वों के बारे में बताया ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये आग से ही बढ़ते हैं. तो ये टेक्नोलॉजी तो हम दे सकते हैं जो यज्ञ करते हैं, दूसरे लोग नहीं दे सकते. तो ये हमारी जिम्मेदारी है. तो इस जिम्मेदारी के लिए वो क्या कहते हैं, गायत्री मंत्र का जप करने वालों का एक समूह बने. ठीक है, तो मैं कहता हूं अगर 24 लाख व्यक्तियों का एक समूह बन गया तो वो एक दिन में एक गुरुजी का पुरस्चरण पूरा हो जाता है. गुरुजी का पुरस्चरण पूरा हो जाता है, उनका पुरस्चरण नहीं पूरा होने वाला है. वो तो एक ही मंत्र जपते ना. लेकिन गुरुजी चाहते हैं, कहते हैं कि भाई तुम अपने घर बनाने के लिए किसी से 10 लाख मांगोगे कोई नहीं देगा, लेकिन अगर आप देवालय बनाना चाहते हो तो दूसरे दिन आपको मिल जाएगा 10 लाख. तो गुरु जी का काम करने के लिए ये गायत्री की 24 लाख का पुरस्चरण की शक्ति अगर समूह बन गया, हम तो एक अति का उदाहरण दिया, अगर हम 2000 आदमी 2400 भी बना दिया तो अगर वो एक दिन में एक माला भी कर दिया तो हो जाएगा। तो कुछ इस तरह का मन में रख के इस तरह के ग्रुप अगर हम बनाते चलेंगे तो सिद्धियां वहां होती चली जाएंगी, रिद्धियां अपने आप बन जाएंगी। ये तीसरा काम हमने कहा, तीनों काम याद आ रहा ना, यज्ञ, जन्मदिन, विवाह दिन। उसके वो नहीं तो क्रांति धर्मी साहित्य पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, नहीं गायत्री मंत्र का जप करो उसका समूह याद करो, ये भी नहीं तो गायत्री देवालय के बारे में गुरु जी कहा करते थे। जाति मत से कोई संबंध नहीं है, आगामी समाज का, आगामी पृथ्वी का, आगामी मानव जाति का अधिष्ठाता सूर्य है, उसके बिना मानव जाति को कोई चारा नहीं। तो उस अधिष्ठाता का देवालय बनाना है। तो गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि ये द्वादश ज्योतिर्लिंग के बारे में बड़ी गलतफहमी है कि वो शिव है। द्वादश ज्योतिर्लिंग तो सूर्य के हैं, सूर्य 12 तरह का होता है एक साल में, तो वो द्वादश ज्योतिर्लिंग तो वो है। और कितना हम गलत ढंग में हैं कि शिव के दूसरे हैं, 12 राशियां हैं। तो सूर्य विज्ञान के बारे में उन्होंने एक किताब लिखा है, ये वांग्मय में हमें याद नहीं किस खंड में लिखा है, उसमें आपको ये मिलेगा ये सब जो मैं बता रहा हूं। तो जितने ज्योतिर्लिंग हैं सब सूर्य का ही अलग अलग रूप है, और सूर्य के मंदिर तो वो हर्ष के समय में कौन आया था, चाइनीज ट्रैवलर आया, जैसे मार्कोपोलो आया उस तरह, उसका नाम नहीं याद आ रहा। तो उन्होंने कहा 24,000 सूर्य देवालय है और अब ढूंढने से भी एक भी सूर्य देवालय नहीं मिलता। तो हम सूर्य देवालय बनाएंगे गायत्री के नाम से, गायत्री देवता बोल के, गायत्री मंत्र का अधिष्ठाता सूर्य को हम भूल जा रहे हैं। तो कहते हैं अब सूरज की उपासना करने के लिए मत की मंत्र के सॉरी कोई जाति या मत की जरूरत है? अगर उसको जरूरत भी ना हो, अगर वो ना भी देखे तो सूरज की वजह से तो जिंदा है, सूरज और पानी, इसके बिना कोई लाइफ नहीं है। तो सूरज का पूजा करते हैं और अर्घ्य चढ़ाते हैं जल। तो यह जो है संपूर्ण मानव जाति के साधना का विधान के रूप में आगे रखना। तो बार बार वो हम लोगों से कहा करते थे जब तब मैं एमएससी वगैरह पढ़ता, तुम लोगों को गायत्री को हिंदू नाम से, हिंदू के क्लच से खींच कर बाहर निकालना है। हमने तो निकाल दिया, समझाओ लोगों को ये बात कि सूर्य इम्पॉर्टेंट है, सूरज इम्पॉर्टेंट है, उस तरह के देवालय। तो हमने क्या किया है, यहां आने के पहले 108 जगह हमने जो है पंडाल, जैसा जैसे रामनवमी के दिन और गणेश के लिए पंडाल बनते हैं ना, उस तरह पंडाल बना के लिख के लोगों से कह दिया कि वहां सूरज को रखो या गायत्री को रखो, जो भी रखो सबको आने दो, और सबको समझाओ कि पूजा करने का पंच पोषोपचार पूजा में इस उपासना का ये मतलब है। बोलते रहो, वो कहते कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आया तो अच्छा तुम पढ़ो, बाद में इतने आदमी आएंगे कि तुमको पढ़ने का समय नहीं मिलेगा पहले तुम करो। तो यह है गायत्री देवालयों का निर्माण, सूर्य देवालयों का निर्माण। इसमें कुछ खर्च नहीं है, पंडाल में क्या खर्च है, कई लोगों के पास तो बरामदा होता है अपने यहां, तो बरामदा में ही रख लो। और उपासना बनाने, उपासना विज्ञान उन्होंने एक खंड है वांग्मय में, उपासना समग्र समर्पण,
उपासना समर्पण,
हाँ समर्पण है, उपासना करने से अपने आप समर्पण सीख जाओगी। तो उपासना में कुछ करने करना है, पांच, एक पुष्प, एक जल, ये पांच जो होते हैं ना, गंध, अक्षत, किस भावना से चढ़ाना है। भावना में अक्षत चढ़ाते हैं तो हमारे पास जो भी है खाने का पीने का उसका कुछ हम समाज को देंगे, अग्नि ज्ञान को दूंगा, दीपक जलाएंगे, अगर धुआं तो हमारा जीवन ऐसा सुगंधमय हो कि लोगों को अच्छा लगे। तो ये भावना में कौन सी धर्म की बात हो रही, कोई धर्म की बात है इसमें? तो कहते हैं ये बताओ, और ये सारी शक्ति कहां से आएगी, सूरज से आएगी। तो गायत्री, हम गायत्री देवालय बोलेंगे, लेकिन गायत्री देवालय मतलब जीवन देवता साधना। अपने अंदर जो देवता है उसकी हम साधना करते हैं, बाहरी देवता का साधना नहीं कर रहे हैं। गुरु जी हमेशा यही कहते थे कि हमने तो जीवन देवता साधना आपको दे रहे हैं, ये समझाना है। और अंत में जो है यूनिवर्सिटी है, उसके बारे में अगर बता सके और उसके लिए हम कुछ कर सके तो करेंगे। तो ये पांच काम जो भी करे वो गुरु जी का काम करे, इसमें ऐसा कौन है जो हम नहीं कर सकते। अरे कोई मिला, कोई पढ़ना चाहता है तो बता सकती हूँ, देव संस्कृति विश्वविद्यालय जो पढ़ना चाहे पढ़ो। अब वो पढ़ेंगे कि नहीं ये तुम्हारी जिम्मेदारी थोड़ा ना, वो तो गुरुजी देख लेंगे किसको खींचना है या किसको रोकना है। तुम ये नहीं मानेंगे करके बताना मत छोड़ो, बस ये प्लान है। तो समय कितना होगा, समय ज्यादा हो गया,
करने जाते हैं तो बाद में क्या फॉलोअप करना चाहिए?
फॉलोअप तो जन्मदिन लिया ना, तो उस जन्मदिन को उनसे एक दिन पहले बता दे कि मैं आके आपका जन्मदिन संस्कार कराएंगे। अगर आप 5 मिनट में पूरा हो जाना चाहे तो 5 मिनट कर दें, 2 घंटा वो सुनने का उनका मर्जी हो तो 2 घंटा। क्योंकि अगर एक बार हम ज्यादा समय ले लिया उसको अच्छा नहीं लगे तो फिर दोबारा हमारे पास नहीं आए, ये गुरु जी कहा करते थे। तो मौका दे, तो हर जन्मदिन, तो अगर आप नोट करना चले जाए तो आपको बहुत से जन्मदिन मिल जाएंगे उसी महीने में। तो उतनी जगह जाके जन्मदिन के बारे में हमने कहा ना कि क्षमा सह फॉरगेट एंड फॉरगिव, ये सब जो ये 5 मिनट में आप बता सकते हैं कि यही जन्मदिन का उद्देश्य है। अगर आप बदल गए इस रूप में तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मैरिज डिन के दिन संबंध बने, समाज बना, इतने लोगों से हमारा समाज किस उपयोग के लिए बन रहा है। तो हर संबंध का अपना उपयोग है। विवाह के समय 5 दिन पहले होते थे तो हर संबंधी को उसका अपना जिम्मेदारी निभाना पड़ता था, अब तो सब भूल गए। तो इतना तो हम नहीं कर सकते इस समय, लेकिन जो विवाह के संस्कार में जो गुरुजी ने दिया था, गुरुजी ने दिया ना कि वधु को ये, वर को ये, उसको रिपीट कराना है अगर वो रिपीट करना चाहे। उसमें कुछ ऐसे हैं जो शायद कुछ लोगों को अच्छा ना लगे, उसको ना दोहराए। कुछ लाइन्स ऐसे हैं जो पहले बार जब सुनते हैं तो अच्छा नहीं लगेगा, तो उसको हम नहीं रिपीट करवाएंगे। तो इनसे साथ, इनसे साथ, बस उतना है, बस वो लगना है, पता नहीं कौन सा चोट किसको क्या बना दे। तो ये यज्ञ के बाद ये करना है, ये ज्यादा जरूरी है, यज्ञ से ज्यादा जरूरी है। अगर हो सके तो संस्कार में भी यज्ञ, जन्मदिन संस्कार में भी यज्ञ कर, वो तो उनकी इच्छा पे। और हमारा अपना अनुभव है कि पहली बार ना नुकुर करते हैं लेकिन बाद में सब कहते हैं ठीक है यज्ञ भी करा लेते, अच्छा लगता है उनको, सबको अच्छा लगता। लेकिन वो अब एक ही आदमी ये करना चाहे तो कितने जन्मदिन संस्कार कराएगा? तो पहले कुछ लोगों को ट्रेनिंग करा के
कराना पड़ेगा, क्योंकि
ट्रेनिंग कराना
होगा। 4 संडे मिलते हैं, 4 संडे, 4 संडे, तो 8 जगह कराना।
वो तो पहले तो भाई गुरुजी के लिए तो उतना करना ही होगा। तो उसके लिए आपको करने वालों को ट्रेनिंग करके, ऊपरी ऊपरी ट्रेनिंग, कोई डीप में जब हो गया तो आप अंतिम मिनट में जाके आप बता सकते हैं कि ये कुछ इस तरह से। ये केवल सबके लिए मैं बता रहा हूँ ये 5 काम। अब क्या करना है, कैसा करना है, कल बात करूँगा।
बस एक क्वेश्चन।
हाँ,
जैसे गुरुदेव ने बोला कि गुरुदेव ने जिम्बाब्वे में, अफ्रीका में जब आए थे वो, तो उन्होंने पूरे 4 लेक्चर दिए थे, तो उसमें उन्होंने एक जगह बोला है एंड वाले दिन कि अगर आप पूरा यज्ञ नहीं कर सकते, तो उन्होंने बोला छोटे से हवन को लिए दीपक जला के उसमें कर, तो हम तो वही कर पाते हैं।
ठीक है भाई, तुम भौतिक क्रिया इम्पॉर्टेंट नहीं है, अंदर जोश का आग जलना है असली, तो वो है। अगर जोश का आग जलता हो तो ये भी नहीं जरूरत है। तो यह भाव गुरुजी हमेशा कहते हैं कि कर्मकांड को महत्व मत दो, कर्मकांड के पीछे जो भावना है। मैं तो ये इसलिए कह रहा हूं कि कुछ लोगों को अच्छा लगता है तो उनको उस दिशा में ले जाते, तुम्हें तो उसकी क्या जरूरत है।
सिर्फ जन्मदिन पे बच्चों के या
उस पे वो नहीं करते। हाँ, काफी है, लेकिन बच्चों को ये समझा नहीं सकते फॉरगिव फॉरगेट, लेकिन हमारे बिहेवियर में अगर वो दिखे तो अपने आप सीख लेंगे। یہ ہم لوگوں کے اوپر ذمہ داری آ جاتا ہے. لیکن دھیرے دھیرے یہ ایک دن میں نہیں ہونے والا ہے, ہم گرتے رہیں گے اٹھتے رہیں گے, گرتے رہیں گے اٹھتے رہیں گے بڑھتے رہیں گے. اگر آپ یہ سوچتے ہیں میں نہیں کر پاؤں گے اور چھوڑ دیا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو ادھارن گرو جی کہا کرتے تھے, بچے جب چلنا سیکھتے ہیں تو گرتے رہتے ہیں. تو کوئی ماں باپ یہ نہیں کہتے کہ چونکہ تم گرتے ہو مت چلو, ٹھیک ہے ہم نہیں کر پائے کچھ, کیا فرق پڑتا ہے, اب کی بار سے کریں گے. جب ہاں
کچھ بول رہے تھے کہ
اگر سمبھو ہو سمے ہو, نہیں تو گرو جی ہمیشہ کہا کرتے تھے اگر کچھ سمے نہیں ملا تو ڈائریکٹ آپ اگنی پرجولت منتر پڑھ کے اگنی جلا دیجئے, آہوتی جتنا ڈالنا ہو ڈال دیجئے, پورناہوتی ڈال دیجئے, ودا. اصلی چیز تو وہ ہے, یہی اسی کو آپ سمجھنا ہے. کئی لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ صاحب ضروری, ارے گرو جی نے خود لکھا ہوا بھیا, میں جو بتا رہا ہوں ان کی بات بتا رہا ہوں, میں یہ ہماری کلپنا نہیں ہے. بس وہی کہتے اور گرو جی کہا کرتے تھے کہ پرانے زمانے میں چولہا جلاتے تھے, ہاں پانچ ڈالتے بس. تو وہی تو یہی ہوا نا, وہ کیا ہوا یہی تو ہے. تو گرو جی نے کیا کہا کہ اگر آپ کو یگی کرنے کا سمے نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو آپ ایندھن جلا کے آگ جلا رہے اسی میں یگی کر لو پانچ آہوتی, اب اس سے زیادہ اوپن کیا چاہیے آپ کو. اس کو مہا یگی بولتے ہیں, بل ویشیہ دیو مہا یگی. آپ پانچ آہوتی دے رہے اور وہ مہا یگی کہلاتا ہے کیونکہ اس کا اسپرٹ وہ ہے. اب سمجھ میں آیا
کہ وہ دھواں تو گھر میں ہو رہا ہے تو باہر کیسے جائیں گے.
آپ ایک کام کیجئے, ایک سوکھا مرچ اس میں ڈال دیجئے, ڈال دیجئے تو کیول گھر میں ہی اس کا اثر پڑے گا کہ بغل والے گھروں پہ پڑے گا. تو تمہارا آہوتی بغل والے گھروں کو سد بدھی کیوں نہیں دے گا؟ سمپل لاجک. چونکہ یہ کھانسی کچھ تکلیف دائک ہے ترنت سنائی پڑتی ہے, اور سد بدھی تو اتنا آسانی سے سمجھ میں نہیں آئے, اترنے میں سمے لگتا ہے. ارے گرو جی کے چمتکار ہی چمتکار ہیں, کس طرح لوگوں کو بدلنے کے لیے چھوٹی چھوٹی ٹیکنیک, اور سب ادبھت. اگر اس کا اندر کا بات سمجھے تو لگتا کتنا ادبھت ہے. لیکن ان کو سمجھنے کی نہیں ضرورت ہے, جو کرنے والا کرے تو وہ تو پھیلانا کا کام تو کرنے والے کا, اثر تو اس کو بھی پڑے گا, آپ کو بھی پڑے گا, اس کو بھی پڑے گا. تو اس کو جاننے کی بھی ضرورت نہیں کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں.
اور اسی کے اس میں جیسے کھانا بناتے ہیں گھر میں تو پیاز بھی ہوتا ہے اور وہ بھی ہوتا ہے,
تو کیا فرق پڑتا ہے؟
ہاں تو اس سے
کیا فرق پڑتا ہے؟
نہیں مطلب
کہاں کہاں کی آپ کو تکلیف ہو رہی ہے,
بھگوان خود کا پیاز بناتا ہے تو اس کو کیا.
کافی لوگ بولتے ہیں کہ پیاز اور مسالہ ڈال کے آپ پھر بھگوان کو کیوں بھوگ دیں, لیکن ہم لوگ جو کھاتے ہیں تو وہ,
ارے بھگوان تو سب کھاتا ہے, بھگوان تو سب کھاتا ہے,
وہ تو کبھی نہیں بھوگ بناتے, جو بناتے ہیں پریم سے.
بھائی تم کو جو اچھا لگتا ہے وہ دو,
جب کھاتے ہیں میٹ کھاتے ہیں تو
کچھ آپ نے کچھ گروؤں کی کہانی سنا, جس کتھائیں سنا, جس میں ایک شیشے سے وہ کہتا ہے کہ وہ سڑا ہوا جو کتے کا ماؤس پڑا رہتا ہے تو کہتے اس کو کھاؤ, اور کئی شیشے نہیں کھاتے, ایک شیشے آگے بڑھ کے کھانے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے وہ میٹھا بن جاتا ہے. تو جو بھی ہم نے بھگوان کو دیا اگر سڑا ہوا کتے کا ماؤس اگر میٹھا بن جاتا ہے تو تمہارا پیاز نہیں بنے گا. ہاں شاید تم دینا نہیں چاہتے ہو کئی بار, دادا میں بتا رہا ہوں گرو جی نے کیا کہتے ہیں. گرو جی کہتے ہیں کہ ہم کو کہتے تھے ڈاکٹر آر کے, وہ مزاق میں تو کہتے ڈاکٹر آر کے ہم کو ایسا لگتا ہے کہ جو بھوگ لگانے سے بھگوان کھانا شروع کر دے تو لوگ بھوگ لگانا بند کر دیں گے. تو بھوگ اس لیے لگاتے ہیں کہ بھگوان تو کھائے گا نہیں, کھانا تو بعد میں ان کو ہے. तो उनका हंसी समझ में आया मजाक, भाई तुम जो खाते हो खिलाओ,
अच्छी चीज भगवान को देते तो खुद को खाने को मिलती है।
और प्रसाद में अच्छा क्या बुरा क्या, प्रसाद तो प्रसाद।
साधना के बारे में आप खाली मंत्र बात करते हैं, आगे कैसे
साधना के कल बताऊंगा, योगासन और प्राणायाम
कभी बताएंगे, अच्छा
सबको बता देंगे,
इम्पोर्टेंट है हम डेली रूटीन में अगर साधना कैसे करें
जरूर बताएंगे,
इम्पोर्टेंट तो नहीं कर रहे हैं ना, गुरुदेव ने बताएंगे
वो पूरा बता देंगे।
दीदी आपको थोड़ी देर आपको बात करनी चाहिए, आप कर लीजिएगा, यहाँ पर कर लीजिए नहीं तो ऊपर जाके कर लीजिए,
जैसा आप चाहें चले ऊपर, या ये लोग ऊपर जाएंगे हम लोग यहाँ बात कर लेंगे, जैसा आप चाहें,
नहीं हमारा तो प्लेस यही है आपको वैसे,
अच्छा आपका प्लेस
ये हमारा, हम लोग यही पे चाहेंगे,
नहीं जब आपको नींद आएगा तब ना,
हम चारों का एक रूम बना लिया,
ये क्या है, ये
रिकॉर्ड
है, रिकॉर्ड है।